یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔
دیش کے گلستان میں طرز کی ہمیں سے ہے، دیش کے گلستان میں طرز کی ہمیں سے ہے۔
تمام سننے والے بچوں کو ہمارا سلام۔ آپ کی نور آپی، ببلی اور چاچا چکمک کے ساتھ ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہیں۔
چاچا چکمک، آپ کو کیا ہوا؟ نور آپی، یہ چاچا چکمک کو کیا ہوا؟ مسلسل کھانس رہے ہیں۔
میں ٹھیک ہوں۔
آپ جلدی سے چاچا چکمک کے لیے ایک گلاس نیم گرم پانی لے کر آؤ۔
ٹھیک ہے، میں ابھی لائی۔ یہ لے چاچا چکمک، یہ پانی پی لے۔
وہ مجھے کل سے کھانسی ہو رہی ہے اور یہ کمبخت کھانسی پیچھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
چاچا چکمک، آپ کو معلوم بھی ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ان دنوں موسمی بیماریاں بھی عام ہو جاتی ہیں، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔
اوف، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔
شکریہ آپ دونوں کا، میں اب نیم گرم پانی پینے کے بعد کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔
اب میں ابھی انٹر کام پر آپ کے لیے جوشاندے کا کہتی ہوں۔
ہیلو جی، چاچا چکمک کے لیے ایک کپ جوشاندہ لے آئے۔
جی ہاں نور آپی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل ایک دم سے سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے جبکہ ہمارے معمولات ابھی تک گرمی کے موسم کے مطابق چل رہے ہیں۔
بھائی نور، اب پروگرام کی تفصیل کی طرف چلیں، میری وجہ سے پروگرام متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا بالکل بھی نہیں ہے چاچا جگمگ، ویسے بھی ہمیں اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، لیکن پہلے پروگرام کی تفصیل کے لیے نور آپی کی طرف چلتے ہیں۔
ہمارے آج کے پروگرام میں معمول کے مطابق بات چیت کے علاوہ نظم، گیت، کہانی اور بولتی کتاب شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ موسمی تبدیلی اور بیماریوں سے بچاؤ پر بھی تفصیل سے بات کر سکیں۔
نور آپی، ہمارے یہاں سال بھر میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟
ببلی بیٹا، ہمارے ملک میں سال بھر میں چار موسم آتے ہیں، جن میں موسم بہار، موسم گرما، خزاں اور موسم سرما شامل ہیں۔
کیا آپ ان موسموں کی کچھ تفصیل بتائیں گی؟
بہار کا موسم سردیوں کے ختم ہونے پر آتا ہے، اس موسم میں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف سبزہ اور ہریالی پھیل جاتی ہے۔ اس دوران موسم انتہائی حد تک معتدل اور سازگار ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟
اس کے بعد گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اس دوران اکثر علاقوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ موسم مچھروں اور مکھیوں کی افزائش کے لیے بھی موزوں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس موسم میں ہیضہ، ملیریا اور بخار کے علاوہ کئی اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، جبکہ اس موسم میں ہیٹ سٹروک یا لو لگنے کی بیماری کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نکلتے وقت موزوں لباس کا انتخاب کریں اور اپنے سر کو ڈھک کر رکھیں تاکہ براہ راست دھوپ سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھروں اور مکھیوں سے بھی خود کو بچا کر رکھیں۔
اور اس موسم کے بعد شاید خزاں کا موسم آتا ہے؟
جی ہاں، خزاں کے موسم کی یہ پہچان ہے کہ اس دوران درختوں کے پتے پیلے پڑ کر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد ایک دم سے سردی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس موسم میں بخار، گلے کا خراب ہونا اور جلد کا خشک ہونا عام بیماریوں میں شامل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موسم میں ہم مناسب حد تک گرم لباس پہنیں اور خود کو سردی سے محفوظ رکھیں۔
خزاں اور سردی کے موسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟
ببلی بیٹا، خزاں کا موسم ایک طرح سے سردیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ خزاں میں سردیوں کی نسبت کم ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن اس موسم میں ہم ذہنی طور پر سردی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ इसलिए हम अपने लिबास और दूसरी चीजों का इस तरह ख्याल नहीं रखते जिस तरह रखना चाहिए।
और सर्दियों में हम ज़हनी तौर पे सर्दी और ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूँकि सर्दियाँ खिजां के मौसम के बाद शुरू होती हैं, इसलिए हम किसी हद तक सर्दी के आदी हो चुके होते हैं। सर्दी का मौसम अपने साथ बुखार, निमोनिया, नज़ला और दूसरी कई मौसमी बीमारियाँ लेकर आता है, जिनसे बचने के लिए हमें मुनासिब लिबास, मुनासिब खिजा और अपने जिस्म को गर्म रखने के मुनासिब इंतजाम करना चाहिए।
और आजकल खिजा का मौसम है, जिसमें हमें खुद को बीमारियों से बचाने के लिए अपने लिबास और ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए।
और मुझे भी मौसम के मुताबिक अपना ख्याल न रखने की सजा मिली और अब खांसता फिरता हूँ।
लेकिन आप आज ही डॉक्टर से जरूर मशवरा लीजिएगा ताकि आपकी सेहत मजीद ना बिगड़े।
हाँ, ये तो जरूरी है।
नूरापी, इतनी बातें सुन लेने के बाद अब एक नज़्म तो सुनवा ही दे।
हाँ भाई, हमारी भी यही ख्वाहिश है।
तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी नज़्म।
करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क।
بھائی دور، مجھے تو یہ نظم بہت ہی اچھی لگی۔ نظم ہی نظم میں ہم نے سڑک پار کرنے کے بارے میں بھی سیکھ لیا،
اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے سگنل کی بتیوں کے رنگوں کے بارے میں بھی سیکھا۔
جی ہاں، یہ ایک اہم موضوع ہے، چونکہ ہم ہر روز سڑک پار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں سگنل کی بتیوں اور زیبرا کراسنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔
نوراپی، خزانہ میں آج کیا ہے سننے کو؟
خزانہ میں آج ہم انگریزی حروف تہجی کے حرف کے کی نظم سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔
بہت اچھی نظم تھی، ہم نے اس سے بہت سے نئے لفظ اور نام بھی سیکھے۔
بھائی نور، مجھے امید ہے کہ اس نظم کے بعد ہمیں ایک پیاری سی کہانی بھی ضرور سننے کو ملے گی۔
او ہاں نوراپی، کہانی سنائے نا۔
ارے کیوں نہیں، ضرور سنوائیں گے آپ کو کہانی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ آج کی کہانی۔
شہر سے بہت دور پہاڑوں کے دامن میں ایک گھنا جنگل ہے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت ہیں، ان میں سے سینکڑوں درخت ایسے ہیں جو میرے سامنے بڑھے اور بڑھ کر جوان اونچے لمبے درخت بن گئے۔ میں شاید اس جنگل کے سب سے پرانے درختوں میں سے ایک ہوں، میری عمر شاید 200 سال کے قریب ہوگی۔ ان 200 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کا خوب مزہ لیا۔ میں نے ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں اور برسات میں بھیگنے کا لطف بھی اٹھایا۔ फिर सर्दियों के मौसम में बर्फ के नन्हे नन्हे गालों से खिचकेलियाँ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ना मालूम कितने ही परिंदों ने मेरी टहनियों पर अपने घोंसले बनाए, मेरी डाली डाली घूमे और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे ये जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज रात मुझे लगता है कि मेरा इस जंगल से रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे रह रहकर अपने दोस्तों का ख्याल आ रहा है। इस जंगल में रहने वाले तकरीबन सभी जानवर मेरे दोस्त हैं। बंदर जो मुझ पर छलांगे मारते हुए अचकेलियां करते हैं, मेरी टहनियों से लटक कर दूर दूर तक झूला झूलते हैं, मेरे तने से लेकर मेरी चोटी तक हर जगह जंगली गिलहरियां घूमती फिरती हैं। कब्बे, बाज और दूसरे ऊंचा उड़ने वाले परिंदे हमेशा मेरी ऊंची टहनियों पर बैठकर आराम करते हैं। ये सभी मेरे दोस्त हैं। इन्होंने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, हमेशा मेरे साथ प्यार से पेश आए और मुझे भी यकीनन उनकी मदद करके हमेशा खुशी हुई। लेकिन अब लगता है कि मुझे अपने दोस्तों से बिछड़ना पड़ेगा। आज दिन में कुछ लोग जंगल में आए और बहुत से दूसरे दरख्तों के साथ मेरे तने पर भी एक निशान लगा दिए। मुझे लगता है कि मुझे काटने का मंसूबा बना चुके हैं और शायद कल ही वो लोग आकर मुझे काट डालें। इन्हीं सोचों में रात गुजर गई और सुबह सुबह कुछ लोग आए, हाथों में आरे लिए और मुझे तने से काट डाला। मुझे काटने के बाद उन्होंने मुझे ऊंचाई से गिराकर नीचे वादी में पहुंचा दिया। नीचे गिरते हुए मेरे जिस्म पर मौजूद मेरी छाल बेदर्दी से छिल गई, मुझे काफी चोटें आई। क्या लाकर मुझे बड़े बड़े टुकड़ों में काटा गया और फिर मुझे मेरे और बहुत से साथियों समेत एक ट्रक पर लाद कर शहर की तरफ चल पड़े। ये कई ट्रक थे जो एक साथ बहुत से दरख्तों की लकड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। मुझे अजीब लग रहा था, ये सब मेरे लिए काफी तकलीफ दे था, लेकिन हैरान था कि आखिर ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। कई घंटों के तवील सफर के बाद बिलाखिर ट्रक शहर में दाखिल हुआ। मैं पहली बार शहर देख रहा था, बड़ी बड़ी इमारतें थी, रंग बिरंगी जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि जंगल जैसी खूबसूरती यहाँ तो नहीं थी, लेकिन यहाँ की जैसी चहल पहल और भागती दौड़ती जिंदगी जंगल में भी तो नहीं थी ना। शहर पहुंचकर मुझे दूसरे दरख्तों के बड़े बड़े टुकड़ों के साथ एक बड़े से गोदाम में डाल दिया गया। यहाँ कुछ आरे लगे हुए थे जिन पर हम जैसे लकड़ी के बड़े टुकड़ों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक खरीदार ने मुझे भी खरीद लिया और फिर उसके बाद मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कारपेंटर की वर्कशॉप में पहुंचा दिया गया। यहाँ मुझे मजीद काट छाट के बाद मुझसे कुछ कुर्सियां और डेस्क बनाए गए। इसमें काफी वक्त लग गया। कई दिन तक मुख्तलिफ कारपेंटर मुझे नई शक्ल देकर फर्नीचर में तब्दील करने लगे। मेरे लिए ये सब एक नया तजुर्बा था। कभी कभी तो मुझे ये सब काफी अजीब लगता था, लेकिन मैं अकेला थोड़े ही था। दरख्त मेरे साथ जंगल से लाए गए थे और वो सभी किसी न किसी खरीदार के साथ चले गए थे, जहाँ मालूम नहीं कि किन किन चीजों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाना था। मुझे तो वैसे भी अपनी नई शक्ल यानी फर्नीचर बनना काफी अच्छा लग रहा था। जब मैं डेस्क और कुर्सियों की शक्ल में तैयार हो चुका था, फिर मुझ पर कुछ लोगों ने पॉलिश की और यूं मैं चमक कर नए फर्नीचर की शक्ल में तैयार हो गया। मुझे अपना नया रूप अच्छा लग रहा था। एक दिन मुझे ट्रक पर रखकर एक स्कूल में पहुंचा दिया गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे मुझ पर बैठकर दिन भर इल्म हासिल करते थे। मुझे उन प्यारे प्यारे बच्चों का बोझ उठाना बहुत अच्छा लगता था। जंगल में तो मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन यहाँ स्कूल में मुझे बच्चों के साथ दिन गुजारना बहुत अच्छा लगता। बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे प्यार से इस्तेमाल करते हैं। कुछ शरारती बच्चों ने मुझ पर अपना नाम लिखकर मेरी खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर उनके टीचर ने उन्हें ऐसा करने से सख्ती से मना किया और उन्हें बताया कि अगर वो मुझे प्यार से और एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो मैं हमेशा ऐसे ही चमकता रहूंगा। हर रोज मुझे सुबह सुबह एक शख्स आकर झाड़ पोंछ कर साफ करता। उस आदमी की शायद ये जिम्मेदारी है कि वो मेरा ख्याल रखे। मुझे लगता है कि मैं यहाँ लंबे अरसे तक रहूंगा। अब मेरे साथी जंगल के जानवर तो नहीं रहे, लेकिन अब मेरे साथी ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं और मुझे उनसे दोस्ती करके अच्छा लगा है। यूं मैं अपने जंगल के दोस्तों की भी बहुत कमी महसूस नहीं करता। हाँ, रात को मैं अकेले में उदास हो जाता हूँ, जबकि जंगल में ऐसा नहीं था। वहाँ रात को भी मेरे साथ मुख्तलिफ जानवर होते थे जो दिन भर खूब आराम करते थे और रात को शिकार के लिए निकलते थे। यहाँ मैं रात भर सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह होते ही मेरे नए दोस्त आ जाते हैं और फिर दिन भर उनके साथ बहुत खुश रहता हूँ। यूं मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का शायद असल मकसद यही है कि मैं अब दूसरों के काम आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह मैं बच्चों के पढ़ने में एक तरह से उनकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन एक बात सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे काटने के बाद किसी ने मेरी जगह जंगल में कुछ नए पौधे भी लगाए या नहीं, क्योंकि एक दरख्त को बड़ा होने में बहुत लंबा वक्त दरकार होता है, और अगर नए पौधे ना लगाए गए और यूं जंगल से दरख्त कटते रहे तो एक ना एक दिन जंगल खत्म हो जाएंगे और तब स्कूल के बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और कुर्सियां कैसे बन पाएंगी, और अगर दरख्त न रहे तो मेरे पुराने साथी और दोस्त परिंदे कहाँ रहेंगे और अपने घोंसले कहाँ बनाएंगे। दरख्त नहीं होंगे तो जमीनी कटाव और सैलाब को कौन रोकेगा, और फिर ये दरख्त नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन पैदा करेगा। बस यही एक सोच है जो मुझे परेशान किए रहती है।
मजे की कहानी थी,
लेकिन जिन बातों पर दरख्त परेशान था हमें उन बातों पर भी तवज्जो देनी होगी।
जी हाँ, दरख्त हमारे माहौल की बुनियादी जरूरत है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क से जंगलात बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, लिहाजा हमें दरख्त की कही हुई बातों की तरफ तवज्जो देना होगी और नए जंगलात लगाने की जरूरत का एहसास करना होगा। हम अगर एक दरख्त काटें तो उसकी जगह 10 नए दरख्त पालने होंगे, तो भी हम अपने आने वाली नस्लों को एक महफूज मुस्तकबिल दे सकते हैं।
शुक्रिया नूरापी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमें वाकई इस हवाले से काम करना चाहिए।
जी, तो अभी हमने बोलती किताब से ही मिलना है ना जी?
जी हाँ, और आज हम जिस किताब से मिलने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी अम्मी। तो आइए मिलते हैं बोलती किताब से।
मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब, मिट्टी को हरे नयाब, मिट्टी को हरे नयाब, बांटू इल्म के खजाने, बांटू इल्म के खजाने, सिखाऊं अदब अदाब, सिखाऊं अदब अदाब, करूं हर जहन को रोशन, करूं हर जहन को रोशन, हर एक चेहरे को शादाब, हर एक चेहरे को शादाब, मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती।
अस्सलामु अलैकुम बोलती किताब, आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल अच्छी हूँ।
आज तो मुझे आपके सरीवरक पर बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई दे रही है।
जी हाँ, ये एक माँ की तस्वीर है।
और आपका उन्वान क्या है?
आज मैं जिस किताब के भेस में हूँ इसका नाम है मेरी अम्मी।
हाँ, तभी आपके सरीवरक पर एक माँ की तस्वीर है, यानी ये किताब माँ के बारे में है।
जी हाँ, हमारे मुल्क के एक मारूफ सहाफी और अदीब हैं रजा अली आब्दी। उन्होंने 1986 के दौरान मुख्तलिफ लोगों को दावत दी कि माँ की मोहब्बत का कोई वाकया अगर उनके जहन में नक्श हो गया हो तो वो उन्हें लिख भेजें। और यूं बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ वाकयात या कहानियाँ जो उनकी माँ से मुतल्लिक थी उन्हें लिख भेजी। तब रजा अली आब्दी ने उनमें से कुछ लोगों की कहानियों को मुंतखब करके इस किताब की तश्कील की।
तो ये कहानियाँ जिन लोगों की हैं वो बड़े थे या बच्चे,
इस किताब में लिखी गई कहानियाँ 6 साल से 60 साल तक की उम्र के लोगों की हैं। लेकिन रजा अली अब्दी के मुताबिक ये सब कहानियाँ बच्चों ही की हैं, क्योंकि एक 60 साल का शख्स भी अपनी माँ के लिए बच्चा ही होता है।
हाँ, ये तो एक और मुख्तलिफ बात है, यानी कोई जितना भी बड़ा हो जाए अपनी माँ का तो वो बच्चा ही रहेगा।
जी हाँ, माँ बच्चे का रिश्ता तो हमेशा बरकरार रहता है।
और ये किताब किस इदारे ने शाया की थी?
जी, ये किताब संगमील पब्लिकेशंस ने शाया की है।
क्या आप इस किताब के बारे में कुछ मजीद बताना पसंद करेंगी?
जी हाँ, क्यों नहीं। इस किताब में जो कहानियाँ दी गई हैं, उनमें नरजिस रजा की कमाल की अम्मी, मोहम्मद हुसैन सादिक की प्यार की दौलत, राजा शहजाद अली की उल्टी सीधी बातें, अब्दुल बासित की मेरी आरजू, मरियम शहाब की सिर्फ एक थप्पड़, सालेहा बलग्रामी की मेरा नाम सालेहा है, फैसल आजमी की अम्मी के आंसू, मोहम्मद पनाह बलोच की कैदी की माँ, सैयद आफाक अहमद की मैंने सर झुका दिया, अलमास मोहसिन की मुझे अम्मी ने कैसे हंसाया, राहिला लाडली की याद रखो लाडली, इशरत नोमानी की अम्मी की हंसी और मोहम्मद यासिन खान जब माँ भूखी रही शामिल हैं। इसके अलावा किताब का इब्तदाइया रजा अली आब्दी ने लिखा है, जिसमें किताब के बारे में और इसके किरदारों के बारे में तफसीलात दी गई हैं, जबकि किताब का इख्तितामिया भी रजा अली आब्दी का लिखा हुआ है, जिसमें उर्दू वर्षा के हवाले से मालूमात शामिल हैं।
वाओ, ये किताब तो बहुत दिलचस्प होगी।
जी हाँ, ऐसा तो है।
और इस किताब के कितने सफात हैं?
इस किताब के कुल सफात 40 हैं। और ये भी बताती चलूं कि इस किताब में हर कहानी या वाक्य के साथ तस्वीरें भी दी गई हैं, जिनसे कहानी को समझने में काफी मदद मिल सकती है।
आपने वाकई एक बहुत अच्छी किताब का तारुफ करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे बच्चों की पढ़ाई में मदद करके हमेशा खुशी होती है। तो ठीक है प्यारी बच्ची, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के रूप में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
भाई नूर, मेरी तो बोलती किताब से दोस्ती होती जा रही है, अब हर हफ्ते इसका इंतजार रहता है।
आपने सही कहा, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ।
भाई ये कोई आम किताब तो है नहीं, आखिर बोलने वाली किताब है ना, तो इसकी बातें दिलचस्प तो होंगी ही। लेकिन अब मैं बता दूँ कि हमारे प्रोग्राम रोशनी हमी से है का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आखिर में तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आरा और तजावीज के लिए हमें जरूर लिखें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें।
और हमारा ईमेल एड्रेस है roshni@parkreading.org।
और जो बच्चे हमें पैगाम भेजना चाहते हैं, हमारा SMS नंबर है 8333 यानी 8333 पर।
अब नूर, बबली और चाचा जगमग को दीजिए इजाजत।
लेट्स रीड।
ये प्रोग्राम अमरीकी आवाम की मदद और रियासत हाय मुतहदा अमरीका की एजेंसी बराए बैन अलाक्वामी तरक्की के तावन से पेश किया गया। इस प्रोग्राम के तमाम मवाद की जिम्मेदारी पाकिस्तान ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की है। जरूरी नहीं कि इस प्रोग्राम में शामिल मवाद USAID या अमरीकी आवाम के ख्यालात की तर्जुमानी करता हो।